ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमने जो ज्ञान समझा है उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और हमें साथ मिला है एक ऐसी शख्सियत का, एक ऐसी आत्मा का, एक ऐसे भाई का जिन्होंने अपने जीवन में इसे अपनाया, और वो प्रैक्टिकल जो हमारे सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हैं। आज भी वो हमारे साथ हैं, खास माउंट आबू से फर्स्ट सीनियर ब्रदर अशोक भाई हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
और हर बार की तरह हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी, स्वागत आपका। ओम शांति।
ओम शांति।
अशोक भाई, आपसे ही बात करते हैं, आपकी जर्नी पर हम थे जब आपने कहा हमें शुरुआत में बात की कि माउंट आबू जब आप पहुंचे थे पहली बार, बहुत छोटा सा था, एक बस आई थी पूरी लेने के लिए एक व्यक्ति को, और ज्यादा बेड्स भी नहीं थे। लेकिन आज अगर हम वहां जाते हैं, बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य वहां गए हुए हैं, अनंत है, इतना बड़ा है, और इतने सारे वहां पर अरेंजमेंट्स भी हर तरह के हैं, इट लुक्स लाइक गॉड्स हाउस। तो ये जो जर्नी रही है ब्रह्मा कुमारीज की भी, चाहे उस जगह की बात कहें या जनरली ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी, उसके बारे में हमें बताएं।
हम सब जानते हैं कि इस संस्था की स्थापना स्वयं परमात्मा ने की है, और परमात्मा की बुद्धि बेहद की होती है। सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के बारे में ही परमात्मा का चिंतन भी चलता है, और उसका कर्म क्षेत्र भी विश्व को संपूर्ण परिवर्तन करने का ही है। वैसे भी कोई भी संस्था बढ़ती है तो एक्सपोनेंशियल उसकी प्रोग्रेस होती है। शुरू शुरू में बहुत मेहनत लगती है, जब आपने लोगों के जीवन का परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट एंड कंट्रीब्यूशन लेटर का सिद्धांत फॉलो करना है, नेचुरली एक्सपेंशन धीरे धीरे होगी। मगर एक क्रिटिकल फिगर आ जाती है, जैसे 70s के एंड में जाकर के 79-80 में संस्था के स्टूडेंट्स की संख्या करीब 100,000 हो गई थी, और 100,000 का वो एक क्रुशल फिगर था, जिसके बाद एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन जब हुई तो जैसे 28 वर्ष करीब लगे पहला 100,000 करने में, 14 वर्ष लगे उसके 1 से 3 हो जाने में, उसके बाद 3 से 9 हो जाने में। तो अभी जैसा मैंने जाके देखा, मेरे समर्पित होने का कार्यकाल शुरू हुआ 1983 में, और उसमें ही हम लोग 100,000 की फिगर क्रॉस कर चुके थे, और पहला हम एक हॉल बना रहे थे बड़ा, जिसे ओम शांति भवन कहते हैं। उस समय बिना सपोर्ट का वो सबसे बड़ा हॉल माना जाता था, क्योंकि इसमें 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल बनाया था और कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई पिलर नहीं था। और जब एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया तो फिर सरकार की निगाह में भी आ जाते हैं, और जो इंस्पेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी निगाह में भी आ जाते हैं। तो एक CBI के SP साहब को भेजा गया, CID के SP साहब को, मुझे याद है, और उन्होंने आकर के ये चेक करना चाहा कि इतने सारे फंड्स कहां से आ रहे हैं जो इतना बड़ा 1 करोड़ का हॉल बना रहे हैं आप। तो पहले उसने टोटल कॉस्ट पूछी, फिर सिद्धांत वही सुनाया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलर मेंबर्स ओनली, देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपकी संख्या कितनी है। तो आई सेड नाउ वी आर 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस, 1 करोड़ रुपीज हॉल, माई इंक्वायरी इज ओवर, सिंपल एज दैट। एक CBI का CID का SP है, SSP होता है, वो 5 जिलों को संभालता है, लेकिन इतना सेंसिबल होता है कि कंट्रीब्यूशन अगर मेंबर्स की है और संख्या 1 लाख से ऊपर है तो 1 करोड़ रुपया कुछ नहीं। एंड देन ही सेज ओके, मुझे हॉल दिखाइए और ये बताइए कि आप यहां क्या शिक्षाएं देते हैं। लेटर ऑन वही ऑफिसर एज ए DIG हमारे कोर्स में, कोर्स करने के लिए कैंपस में आया, तो वो DGBPRD में सेवारत थे, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक हमें दिया कोर्स करने के बाद। फिर एक और स्टेप सामने आया कि हम लोगों ने सोचा अब हम कुछ कलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स करना शुरू करें ऑल इंडिया लेवल पर। तब तक हम कोई ऑल इंडिया लेवल के कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स जो सारे भारत में एकदम विस्तृत हो जाएं, ऐसे नहीं किया करते थे। तो एक विचार निकला कि हम नेशनल इंटीग्रेशन पीस मार्च का आयोजन करें। हमारी संस्था में उस समय युवाओं की संख्या भी काफी हो गई थी, लेकिन हमारी दादी जी जिन्होंने हमको बड़े जिगर से प्यार से पाला है, वो फिर भी इस ओपिनियन की थी कि इतने सख्त हड्डी वाले कहां होंगे हमारे यज्ञ में, जो भारत के चारों कोनों से चल के और दिल्ली पहुंचे, यानी अगर हम कन्याकुमारी से किसी ग्रुप को पैदल मार्च कराएंगे, देन ही हैज टू वॉक अराउंड 3,000 किलोमीटर्स। एंड शी सेड अशोक, ऐसा हो सकता है? दादी, क्यों नहीं हो सकता, हमारे युवाओं में तो डबल शक्ति है, शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है, कि नहीं नहीं बिकॉज शी वॉज डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ लेडी एंड शी सेड नहीं नहीं एक बार ऐसा करो कि 3 दिन का एक ट्रेनिंग करा के दिखाओ इनको, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे माउंट आबू के भाई बहने जो उन ग्रुप्स को लीड करेंगे जो सारे भारत से चलेंगे, क्या उनमें इतनी शक्ति भरी गई है, इनमें है। तो उनको एक टेस्ट के लिए जाया गया 3 दिन, भले ही सबके पाँव में नेचुरली छाले तो होते ही हैं वो है, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से सक्सेसफुली 3 दिन की वॉक करके दिखाई 30 किलोमीटर पर डे। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इन द आर्म्ड फोर्सेस अ टफनिंग एक्सरसाइज। किसी को बड़ा प्रोजेक्ट कराया जाता है, जैसे हम सुपर हाई एल्टीट्यूड में गए थे तो हमारी टफनिंग एक्सरसाइज चली थी। वी यूज टू प्रैक्टिस अबाउट 5 किलोमीटर्स ऑफ जॉगिंग एवरी डे बिकॉज यू हैव टू लिव इन डिफिकल्ट एनवायरमेंट। सब 3,000 किलोमीटर्स का होना है मैक्सिमम जर्नी, तो 3 दिन का 30-30 किलोमीटर का वॉक करा के किया गया और उससे एक बहुत व्यापक स्तर से विस्तार की नई श्रृंखला शुरू हुई। करीब 45-50 युवा भाई बहने एक एक ग्रुप में थे, एक सोमनाथ से ग्रुप चलेगा, एक भुवनेश्वर से चलेगा, एक गुवाहाटी से चलेगा, एक जम्मू कश्मीर से चलेगा, एक कन्याकुमारी से चलेगा और एक माउंट आबू से। 5 ग्रुप्स पैदल चलते हुए गांव गांव की सेवा करते हुए और लोगों को व्यसनों से मुक्ति दिलाते हुए, ये भी एक उसका एम था। नेशनल इंटीग्रेशन तो उसका नाम है क्योंकि हम भारत के चारों कोनों से चल के और दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या रास्ते में? तो अपने जीवन दर्शन से दूसरों को शिक्षित करना, तो व्यसन मुक्ति का एक लक्ष्य रखा गया कि ये हमारे ऐसे युवा हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं, ब्रह्मचारी हैं, हर व्यसन से मुक्त हैं और इनमें किसी प्रकार का, इनके जीवन को देख करके तो आप कोई ना कोई अपने जीवन परिवर्तन कर ही सकते हैं। तो गांव गांव में लोगों को प्रेरणा आती थी कि अच्छा ये नए सब नौजवान बस 22 साल का 25 साल का 30 साल का ये कोई बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। तो सरपंच को प्रेरणा आती थी, उसको देख करके बाकियों को आती थी। तो एक जिसे मैंने कहा ना एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होती है, तो प्रोजेक्ट्स फिर ऐसे शुरू हो गए जिनसे दिन रात चारों तरफ क्विकली मैसेजेस पहुंचने शुरू हो गए। और गांव गांव में जब आप जाना शुरू कर देते हैं तो नेचुरली भारत की आत्मा जो है वो तो गांव में ही बसती है, तो गांव वालों को जब बल मिलता है तो संस्था जो है एकदम विकसित रूप में आती है। केवल शहरों की सेवा करने से हम उसको संपूर्ण भारत का विकास कभी नहीं कह सकते।
कौन सी ऐसी ताकत है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग भी हो या फिर कई एनजीओज हैं जो बड़े लेवल पर सोशल वर्क करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बर्नआउट होने लगे, तो कौन सी वो शक्ति है जो सस्टेन करवा पाएगी?
एक, क्योंकि मोस्टली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो बाहर काम कर रहे हैं सिर्फ, मतलब आउटर वर्क, इनर वर्क नहीं है साथ साथ। तो आउटर वर्क करने में चैलेंजेस आएंगे, आप गांव गांव जा रहे हैं चैलेंजेस आएंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं कंट्री के चैलेंजेस आएंगे। इनर ताकत नहीं होगी तो आप थक जाते हैं थोड़ा टाइम, तो वो सोशल वर्क हो तो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आपकी एग्जर्शन हो रही है इंटरनल की तो बहुत डिफिकल्ट है। और फिर आपका जो मोटिवेशन है शुरू शुरू में तो वो उमंग उत्साह बहुत होता है, लेकिन कुछ एक सालों के बाद कई बार वो उमंग उत्साह कम हो जाता है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही है, जेनरेट नहीं हो रही है। काम अच्छा हो रहा है लेकिन आपकी इंटरनल एंथुजियाज्म नहीं जेनरेट हो रही है। लेकिन जहां वो वर्क भी हो रहा है लेकिन साथ में स्पिरिचुअल इनर एम्पावरमेंट है, तब आपका कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड आपके अंदर कॉन्स्टेंट एंथुजियाज्म है। सोशल वर्क अगर हम देखें ना, वी जनरली वॉन्ट टू डू इट फॉर अदर्स, ये हमें कुछ किसी और के लिए करना है। यहाँ पे फाउंडेशन होता है मुझे अपने ऊपर काम करना है। सेवा तो जस्ट हैपेंस, एक्चुअली वो हो जाती है अपने आप, हमें कुछ उसमें बहुत ज्यादा करना नहीं है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द धारणा जो हम अपने जीवन में करते हैं। तो इसलिए पहला फाउंडेशन आपका स्ट्रांग रहता है और जितना हरेक का फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा उतना उससे वो एनर्जी तो आउटर फ्लो करेगी कार्य में, और जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली इसलिए भी होती गई, निस्वार्थ कार्य चल रहा था, सेल्फलेस, एब्सोल्यूटली सेल्फलेस, नॉट ओनली फंडिंग, नॉट ओनली कमर्शियली सेल्फलेस, लेकिन किसी को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि नाम मान शान, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा नाम कहीं लिखा जाए, मुझे कोई अप्रिसिएशन मिले, वो एनर्जी भी उस टास्क में नहीं थी। सो वो सेल्फलेस सर्विस जहां होगी, एब्सोल्यूट सेल्फलेस, तो फिर उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है।
अशोक भाई, अब ये जो एक यात्रा हुई उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, चाहे वो डिफरेंट कैंपसेस या रिट्रीट सेंटर्स या विदेशों में जो इतनी सेवा हो रही है, वो फिर पूरा प्रोसेस कैसे चला?
वो फिर जैसे मैंने अब कहा कि एक क्रुशियल फिगर होती है, जैसे 1 लाख की थी और हम उससे आगे बढ़े, तो पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट था हॉल का बनाने का, जो आज भी बेहद की सेवा कर रहा है। फिर एक हॉस्पिटल की बात आई कि संस्था की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, उनको भी कुछ मेडिकल फैसिलिटीज फोर्सी करनी चाहिए, प्लस हम जिस हेडक्वार्टर्स हमारा जो माउंट आबू में है वो टोटली ट्राइबल बेल्ट है, उसके आसपास के जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनकी प्रोग्रेस में हम कुछ इफेक्टिव योगदान करें, नहीं तो लोग कहेंगे चिराग तले अंधेरा है, तो पहले अपने घर का अंधेरा और आसपास का अंधेरा तो दूर करें। इसीलिए हॉस्पिटल के बारे में सोचा गया और उसमें भी काफी ऑब्स्टेकल्स आई, चेंज ऑफ लैंड यूज एक करना पड़ता है, हमको जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनके प्लॉट शहर में थे और मास्टर प्लान में हॉस्पिटल शहर के बाहर दिखाया गया था, तो उसको चेंज कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के साथ साथ पॉलिटिकल लेवल तक भी जाना पड़ता है। मेरे लिए मैं समझता हूं कि सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था उस हॉस्पिटल का चेंज ऑफ लैंड यूज कराने का, क्योंकि एक कलेक्टर साहब ने हमें कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अप्रूवल इज गारंटेड, यू डोंट हैव टू वरी एंड देन यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। अब हम लोगों ने प्रोजेक्ट दे दिया चेंज ऑफ लैंड यूज का भी और कुछ दिन के बाद कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। एक्चुअली चेंज ऑफ लैंड यूज होने के बाद आपके मैप्स अप्रूव होते हैं, मैप्स अप्रूव होने के बाद कंस्ट्रक्शन होती है, तो पहली बार हम लोगों ने एक ऐसा काम कर दिया। अभी तक तो हम वैल्यू सिर्फ पढ़ाते थे और अभी समाज सोशल वर्क में आए तो ये बात हो गई। फिर नेचुरली उनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है कि वो फाइल पहली तो अभी क्लियर हुई नहीं है, दूसरी फाइल पीछे चल रही है, तो यहां तक भी करना पड़ा कि सीएम साहब के बड़े भाई साहब को लाके प्रोजेक्ट दिखाना पड़ा और उन्होंने जाके फिर अपने भाई को समझाया कि पहली बार ये सोशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनको प्रोसीजर्स का पता नहीं है, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट को सब काम इकट्ठे ही कर दीजिए, यानी इनका मैप भी अप्रूव कर दीजिए और चेंज ऑफ लैंड यूज भी कर दीजिए। और इस मामले में हमें सबसे अच्छा योगदान जो मिला वो हमारे सीएम साहब का मिला। वैसे फाइल मूव करने में तो हमारे राजस्थान सरकार ने हमारे एक आईएएस अफसर ने बताया कि सरकार उसे कहते हैं जो सड़क सड़क के चलती है, तो ये प्रोजेक्ट का पास करना इतना आसान नहीं है वो कह रहे थे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा उसका अपना करेक्टर देखिए, ही वॉज गोइंग ऑन रिटायरमेंट, इट वॉज 31st ऑफ दैट मंथ एंड इट वॉज 5:30 PM जब हम लोग सेक्रेटरिएट में खड़े हुए थे। बहुत सारे प्रेरणा के स्रोत भगवान पैदा करता है। वो व्यक्ति सीनियर आईएएस अफसर चीफ सेक्रेटरी लेवल का होकर के एज चेयरमैन ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड ही वॉज रिटायरिंग एंड देन ही सॉ अस, क्या कर रहे हो अशोक भाई यहां आप लोग, एक बलदेव भाई थे मेरे साथ, कि वो हमारी अस्पताल की फाइल है ना उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे सीएम के सेक्रेटरी ने सीएम को पुटअप करके उसको क्लियर कराना है। भाई ये राजस्थान में फाइल ऐसी जल्दी नहीं मिला करती, मैं आपको ढूंढवा के देता हूं। मैंने कहा सर आप रिटायर हो रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं, आपको ऑफिस वर्क भी पूरा। नहीं 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 नहीं, आज की तारीख को रात को 12 बजे तक तो मैं सरकार की स्ट्रेंथ में ही हूं, रात को 12 बजे के बाद रिटायर होऊंगा मैं। एंड इमेजिन दैट जेंटलमैन केम विद अस, ही सैट विद द सीएम सेक्रेटरी, ही गॉट द फाइल सर्च्ड आउट, फाइल लाके उसने सामने रखवाया, उसको मालूम था कि ये स्टेप्स बाद में इसे पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसे देखिए सेक्रेटरी साहब ये सामने आपके व्यक्ति बैठा है, इसे सब सवाल पूछ लीजिए। सोशल प्रोजेक्ट में तो यहां तक होता है कि संस्था के फंड्स की बात और होती है। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज, डू यू थिंक दैट ओनली द बीकेएस विल फंड दिस प्रोजेक्ट एंड रन इट? आई मस्ट टेल यू अशोक भाई, इम्पॉसिबल, यू कैन नॉट रन ए हॉस्पिटल, मुझे आपकी संस्था के संचालन का पता है, आप इमरजेंसी फंड्स नहीं जनरेट कर सकते, आपके पास रूटीन फंड्स तो लोग दे रहे हैं, अस्पताल में तो इमरजेंसी बहुत आती है और उसमें कोई बड़े व्यक्ति का जिसके पास सचमुच काफी पैसा हो और अस्पताल चलाने का अनुभव हो, वो अगर किस ट्रस्ट का मेंबर है तभी आप इसको चला पाएंगे। एंड आई जस्ट टोल्ड हिम सर रीड आउट द लेटर हेड, इट इज नॉट इन द नेम ऑफ बीकेएस, द लेटर हेड इज जे वाटुमल रिसर्च फाउंडेशन, ट्रस्ट बनाया गया। तो ही सेज, ओह इज दैट सेम वाटुमल हु इज रनिंग ए हॉस्पिटल बॉम्बे? यस सर। देन इट्स डन, यू कैन मैनेज इट। बस एक ही था उसके मन में सवाल, देखिए 8 बजे सीएम साहब आएंगे, 8:30 बजे आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे लोगों का भी साथ मिलता है, कुछ तो चीज अनुभव से सीखी जाती है कि सचमुच ऐसे व्यक्तियों का योगदान हो, यानी कुछ सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक शक्तियां मिलकर के जब कार्य करती हैं तब हम सोशल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं।
वेरी ट्रू।
बट दैट टोटल प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू द होल थिंग थ्रू द ऑफिसेस गेव मी एन एजुकेशन which became the foundation for the next project about the academy, which I stay now. So everything in life is a learning process. ही हमको सिखाया जाता है, कितना बड़ा भी कोई विघ्न आए उसको कभी विघ्न ना समझो। ये समझो कि आपको एक नई चीज सिखाने के लिए ये परिस्थिति आपके सामने आई है और आप नया एक नया कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो आपके आगे काम आता रहेगा। दिस इज व्हाट आई हैव सीन एट एवरी स्टेप इन द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन।
अशोक भाई, यहाँ एक बात, जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, एक हॉस्पिटल को बनाना और गवर्नमेंट के साथ या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ, यूजुअल जो एक थॉट प्रोसेस है, एक पूरा बिलीफ सिस्टम है कि बिना करप्शन के, बिना डिसऑनेस्ट हुए काम ही नहीं हो सकते। ये जो आपने इतनी बड़ी बात हमें बताई कि लैंड ड्यूज का चेंज और ये जो इतने सारे, और यहाँ तो आपसे मिस्टेक भी थी छोटी सी, आपने खुद ही स्वीकार किया कि कहीं इनोसेंस में या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी तो मिस्टेक हुई थी, तो उसके बाद वो रिपरकशंस ना आना, और एक इज इट पॉसिबल, मतलब क्या आपको बिना कुछ किसी के साथ भी वो जिसे हम जो कुछ भी जैसे भी कहें, रिश्वत कहें या किसी भी तरह की फेवर कहें, वो दिए बिना ये पॉसिबल हो पाया?
जहां तक मैंने इस सारे प्रोसेस को देखा, बाधाएं तो बहुत आई और बाधा करने वाले काफी हाई लेवल के लोग थे। उनके मन में क्या था मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन नॉट रिकमेंडेड टाइप तक वो प्रोजेक्ट था और फाइल में नॉट रिकमेंड होकर सीएम तक पहुंच गया था। तो उसी व्यक्ति ने हमें गाइड किया, जिस व्यक्ति ने हमारी फाइल अप्रूव कराने में रिटायरमेंट वाले दिन दी, कि देखो आप ऐसी स्थिति में चले गए हैं कि दिस कैन नेवर बी अप्रूव्ड अनलेस यू प्लीज सम यू गो टू सम पॉलिटिकल पीपल एंड दे शुड बी एबल टू टेक ए पॉलिटिकल डिसीजन अबाउट इट। क्योंकि उसमें इश्यू लगा दिया कि एनवायरमेंटली इट इज नॉट फेवरेबल टू मेक ए हॉस्पिटल इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड दैट इन माउंट आबू नोबडी कैन रिमूव एक्सेप्ट द सीएम। तो इसलिए हमें सीएम के भाई को बुला करके भी दिखाना पड़ा हम क्या काम कर रहे हैं, और भी लोगों को हमें साथ लेना पड़ा। सीएम साहब ने भी हमारे तीन चार चक्कर जरूर लगाए अच्छी तरह से, कि पब्लिक, हमारे सीएम की एक विशेषता थी कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करना है तो पब्लिक के रेप जरूर लाने चाहिए। तो हमें अपने एमएलए को, हम तो इस भाव से लेते रहे किसी बहाने एमएलए की सेवा करेंगे, अपने मंत्री की सेवा करेंगे और चार एमएलए की सेवा होगी, तो जितने भी हमारे उस वेस्टर्न राजस्थान के पॉलिटिकल लीडर से सबकी सेवा की और सबको इकट्ठा करके हम लेके गए सीएम के पास। तब जाकर के उन सबको देखकर सीएम ने कहा अच्छा आपके इलाके के मिनिस्टर भी आए हैं, सब एमएलए भी आए हैं, फिर तो मुझे आपका काम करना ही पड़ेगा। एंड देन ही लिफ्टेड द फाइल, ही लिफ्टेड द फोन एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू द पर्सन हु हैड रिटन नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस। तो फाइल उसके पास नहीं थी, लेकिन जब एक पॉलिटिकल लीडर डिटर्मिनेशन कर लेता है कि सचमुच अच्छा काम है तो इंप्लीमेंट कैसे करता है, इट वॉज अ लर्निंग फॉर मी। तो उन्होंने फोन उठाया और फोन उठा करके सेक्रेटरी साहब मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट थिंक आई शुड माइंड दैट, मैं भैरव सिंह बोल रहा हूं सर, सामने से जवाब आता है कि भाई ये सारे एमएलए मिनिस्टर और ये संस्था वाले आए हैं, ये एक अस्पताल बनाना चाहते हैं और मैंने सुना है कि तुमने फाइल में नॉट रिकमेंडेड लिखा है, क्या कारण है? तो उसने कहा सर एनवायरमेंटली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू मेक ए हॉस्पिटल इन द हार्ट ऑफ द टाउन। अच्छा ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करता है? आप हैं सर चेयरमैन उस कमेटी के, आप ही चेयरमैन हैं। अच्छा तो ये बताओ ये जो पर्यावरण की बात है ये जिंदा आदमी के लिए होती है या मुर्दा आदमी के लिए होती है? देख भाई अगर अस्पताल नहीं होगा, लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो तेरा पर्यावरण कौन देखेगा? तो दैट मैन अंडरस्टूड दैट नाउ ही हैज टू डू इट। देन ही सेज सर इफ यू डिजायर इट शुड बी मेड, इट कैन बी मेड बट एनवायरमेंटल इश्यू विल रिमेन। ये पर्यावरण का जो एक समस्या है वो कैसे ठीक होती है? सर पौधे लगाने से। कितने पौधे तुम लगवाना चाहते हो इस इलाके में जहां ये अस्पताल बनाना चाहते हैं? कि कम से कम 500 पौधे लगने चाहिए क्योंकि 2-3 एकड़ का प्लॉट है। हाँ भाई संस्था वालों आप बताओ अशोक भाई कितने पौधे लगाओगे? कि कम से कम 5,000। प्लीज टेल हिम वी लव एनवायरमेंट, वी हैव ए विंग विच इज वर्किंग फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड प्लांट्स आर आवर मोस्ट फेवरेट थिंग बिकॉज वी रन एन इंस्टीट्यूशन वेयर स्पिरिचुअल एनवायरमेंट इज टू बी क्रिएटेड ओनली थ्रू ग्रीनरी। सो 5,000 पौधे की तो आप गारंटी ले लीजिए मैं कोशिश करके 15,000 लगवाऊंगा। हमारे पास समुचित स्थान है, हम खूब डिजाइनिंग ऐसी करेंगे कि 5,000 से अधिक प्लांट्स लगेंगे। एंड ही टोल्ड भाई ये 5,000 कह रहे हैं कर दोगे? सर आप मुझे फाइल भेज दीजिए, मैं उस नोट को चेंज करा देता हूं, कर देता हूं। कि नहीं नहीं नोट तो मैं ही ठीक कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम रिकमेंडेड करके फाइल ले आओ। नाउ आई वाज सीइंग द विजडम ऑफ ए पॉलिटिकल पर्सन। दैट जेंटलमैन माइट बी राइट इन हिज प्लेस बिकॉज ही हैज हिज ओन कॉन्सेप्ट्स, बट देन हायर इज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ही सेज पर्यावरण जिंदा आदमी के लिए होता है या मुर्दा के लिए होता है। एंड दैट जेंटलमैन बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर। सो एंड ही वॉज ऑल्सो ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। जो उन्होंने पुण्य का काम किया, इट गेव हिम पर्सनल बेनिफिट। उनकी ऐसी कुछ पेन्स की दिक्कत थी, उस एज में हो जाती है, जो कहीं भी कोई एलोपैथिक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। दो इट इज ए मॉडर्न एलोपैथिक हॉस्पिटल, बट वी हैव आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, ऑल वर्किंग ऑन द सेम रूफ। ही हैड टू कम फॉर ट्रीटमेंट टू अस एंड ही गॉट हील्ड। तो पुण्य का काम अगर सच्चे हृदय से किया जाता है तो फलीभूत तो होता है, उस व्यक्ति को भी बेनिफिट देता है जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसकी कार्य की पूर्णाहुति में, और आपको हर तरफ से सपोर्ट मिल जाती है अगर आपकी नीयत अंदर से अच्छी है। प्रोसीजर में कोई भी गलती कर सकता है, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आपने रॉन्ग मीन्स को अडॉप्ट नहीं करना। वी विल नॉट गिव एनी मनी टू एनी पर्सन वट एवर मे बी हिज मोटिव, बट इट कैन ऑलवेज बी कंपेंसेटेड बाय हार्ड वर्क। आई हैड टू वर्क 3 constant months। आई वॉज टोल्ड बाई द कलेक्टर यू हैव टू स्टे इन द कैपिटल एंड वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, देन ओनली दिस प्रोजेक्ट विल बी थ्रू। तो प्रोसीजरल एंगल्स में अगर आप शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज नहीं करते, तो थोड़ा सा लॉन्ग कट लेना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन काम तो होता ही है और कोई ना कोई अच्छा निमित्त परमात्मा की ओर से मिल ही जाता है। लाइक आवर सीएम बिकेम द इंस्ट्रूमेंट एंड ही डिड इट
वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट दीज आर द स्टोरीज व्हिच आर वेरी इंस्पायरिंग। सर शिवानी, ये जो यू नो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम हो जाना जो हताश भी तो हो सकते थे, ये जो आपकी परसिस्टेंस थी चारों तरफ से और इतना बड़ा नोट लिखा जाना एनवायरमेंटल इश्यू से जुड़ा हुआ, अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग यू नो वो जान पहचान नहीं है ये कहा जाता है, व्हाट इज इट दैट मेक्स इट वर्क? आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे एनजीओज होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो उनको वो सारी एनर्जीज उनके लिए कैसे वर्क करें?
एक, डिमोटिवेटेड ना हो जाए, अपना विजन मिशन और वैल्यूज क्लियर रखें। अगर मिशन है कि वो काम करना ही है, डिमोटिवेटेड ना हो हार्डशिप से, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज ना करें चाहे कुछ भी हो जाए। एंड जैसे भाई साहब ने कहा, मेहनत बढ़ जाती है। आज हम वैल्यूज पर को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि एक महीना कौन वेट करे वो फाइल पास होने के लिए, तो चलो लिफाफा पकड़ाओ, दो दिन में फाइल पास करा लो। सो इट्स नॉट, एंड फिर हम कहते हैं ये तो करना ही पड़ता है। नहीं, ये हमने किया ताकि हम एक महीने की मेहनत से बच जाएं। सो इट्स एक्चुअली आर लेजीनेस दैट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आर वैल्यूज, एंड देन प्रोबेबली दैट्स नॉट द राइट एनर्जी फॉर आर वर्क। लेकिन अगर हम अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमने हर जगह देखा, ये तो बहुत बड़े लेवल पर था, आप इसको अपने ऑफिस में, अपने काम में, छोटे छोटे लेवल्स पर भी यूज करके देखें। हर ये जो थॉट पैटर्न है कि वो तो लेंगे ही, वहां तो ये करप्शन होती ही है, दिस इज नॉट अ वेरी राइट एनर्जी जो हम भेजते हैं सामने वाले को। जो सामने है वो भी एक आत्मा है जो अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आज दिन तक उसको बहुत सारी ऐसी एनर्जीज मिल रही थी और बहुत सारे लोग थे जो तैयार थे अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन जब ऐसे लोग सामने आएंगे जो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो सामने से भी आपको वो वाली एनर्जी मिलेगी, लेकिन मेहनत पहले हमें करनी है। आई थिंक इफ एवरीवन एक्सपेरिमेंट्स विद दिस, देयर इज नो वे दैट यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा, इट डजंट हैव टू बी सिर्फ जब ऐसे कोई प्रोजेक्ट है या काम है, हर रोज हर बात में छोटी छोटी, चाहे आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया तो भी आप अपने वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि पुलिसमैन की पॉकेट में आपने 100 रुपए डाल दिए और 400 रुपए बचा दिए। वैल्यूज एक एनर्जी है जो आपने हर स्टेप पर अगर यूज किया, तो जब आपके सामने ऐसी कुछ थोड़ी बड़ी परिस्थिति आएगी, तब भी यू विल बी एबल टू क्रॉस थ्रू दैट, डेफिनेट है ये।
शिवानी, अशोक भाई, बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं, और क्यों हमारे काम नहीं बनते ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें, एक पर्सन को देखें, जीवन में जीना एक्चुअली क्यों हम गलत तरीके से सीख गए हैं, ये भी हमारी, क्योंकि वेरी ट्रू, हम कभी अपने आप को इस तरह से कर देते हैं कि तो छोटी सी चीजें हैं, चलो ऐसे मोड़ लेते हैं, यू नो, कि अगर हमने गलती से रेड लाइट का वो भी ले लिया, यहां पर भी हमें अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा. आई थिंक वे ऑफ लाइफ हैज टू बी लाइक दिस,
वैल्यूज हैव टू बी योर पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल.
सिस्टर शिवानी अशोक भाई, थैंक यू सो मच.
ओम शांति.
आज कुछ कुछ और बातें सीख रही. अब देखने की बात यह है कि जब हम अपनी फाइल लेकर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या फिर हायर अथॉरिटीज के पास जाते हैं, तो पहले अपने आप को देखें, पहले चेक करें कि मैंने अपनी वैल्यूज को पूरे जीवन में क्या इम्प्लीमेंट किया है. अगर नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें. और ये थॉट प्रोसेस जो आज समझ में आया है कि हम क्या दे रहे हैं, अगर इस थॉट के साथ जाएंगे कि वो मेरा भाई है, मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट परमात्मा के काम का हिस्सा बन सकता है, चाहे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है, लेकिन क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्टेड हूं, उसकी पावर लेकर अपने काम पर मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है, और फिर मैं उसको भी भरोसा दूं और वेट करूं, इंतजार करने के लिए तैयार हूं कि वो ग्रेजुअली कहीं तो कोई एनर्जी मिलेगी, तो डेफिनेटली हमारे सामने ऐसे सारे एग्जांपल्स आ रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. एक बार अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो शायद वो शक्ति आएगी, वो खुशी मिलेगी कि हम कर पाए, तो आगे के लिए हमें हौसला मिलता है. मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. अवेकनिंग विद धमा कुमारी, इसमें आज इतना ही. आगे आने वाली कड़ियों में कुछ और बात करेंगे. ओम शांति.